محسن انسانیت، اس میں سے ہم نفس سلم کے روابط کو دیکھ رہے ہیں. آج ہم نیا ٹاپک کریں گے، عمرۃ القضاء، یعنی قضاء کے طور پہ کیا گیا عمرہ. نام سے ہی سمجھ آ جائے گا کہ سن 6 ہجری میں جو صلح حدیبیہ ہوئی، اس کی شرائط میں سے ایک شرط تھی کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں اور اگلے سال آ کر 3 دن صرف مکہ میں رہیں گے اور عمرہ کرنے کی ان کو اجازت ہوگی. تو عمرۃ القضاء پھر سن 7 ہجری میں ہوا تھا. اسی کی طرف اشارہ ہے، لوگ اس کو بہت زیادہ نہیں جانتے لیکن اس میں بھی بہت ساری عمل کی باتیں. پہلی بات ہے کہ اللہ کے نبی کا خواب جو تھا سچا ہو گیا، آپ کا جو وعدہ تھا وہ پورا ہوا جو آپ نے مومنوں سے کیا تھا، اور لوگوں کو جو آپ نے کہا کہ میں نے تمہیں یہ کب کہا تھا کہ اسی سال عمرہ کریں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو کبھی بھی جھوٹا نہیں ہونے دیتے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے منہ سے جب کوئی بات کہلواتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اس کی بہت ہی زیادہ قدر ہوتی ہے. دوسری بات دیکھیے کہ اس وقت وقتی طور پہ صحابہ کرام کو ٹارچر ہوا. پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ کس طرح احرام کھولنے کے موقع پہ ہی کوئی تیار ہی نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں پھر تھوڑا سا صبر کیا تو وہ وقت آ گیا الحمدللہ. تو یہ زندگی کا اصول بنائیے کہ فوری نہ ملے اگر تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو خوشی سے قبول کرتے جائیے، اللہ تعالیٰ پھر وہ چیزیں عطا کر دیتے ہیں. کتاب کا پیج کیا ہے، 545 صفحہ، ٹھیک ہے. عمرہ قضا، معاہدے میں طے تھا کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں اور اگلے سال آ کر زیارت کر لیں. کس کی زیارت؟ خانہ کعبہ کی. کہاں سے آ رہے ہیں مسلمان؟ تو پھر مدینہ میں جا کے روزے کی زیارت لازمی ہوتی ہے. یہ کتنی بڑی دلیل ہے، مدینہ میں تو موجود تھے، عمرہ کرنے جا رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے اگر اللہ موقع دے. جب آپ ہم باہر کے دوسرے ملکوں میں سے جاتے ہیں، خواہش رکھنی چاہیے اس بات کی، لیکن اگر نہ کر سکے تو یاد رکھیے مدینہ جانا یا روزے کی زیارت یا جو بھی مسجد نبوی میں نمازیں یا 40 نمازوں کی بانٹ رکھنا یہ لازمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کی میری چوائس پہ رکھا ہے. کوشش تو پوری کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی نہیں کر سکتا تو اس پہ یا اس کے دین پہ شک نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے. چنانچہ اس دوسرے سال کیا ہوا، 7 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفقا سمیت مکہ کا رخ کیا. یہ سفر بھی اگر مرتبہ اول میں دینی تھا، مرتبہ اول کیا مطلب کہ جب شروع ہوا تو دین کا سفر تھا، لیکن بعد میں کیا بن گیا، آپ بولیے، سیاسی بن گیا. کیوں؟ کیونکہ مکہ اس وقت مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں تھا، ٹھیک ہے. تو مرتبہ دوم میں سیاسی، اس سے گہرے اثرات فضا میں مترتب ہوئے. مترتب کیا ہوتا ہے؟ ترتیب سے، یعنی ربط ہوئے یا اس کے اثرات ہوئے. اور اس کی وجہ سے اسلام کا نفوذ نہ صرف مکہ میں بڑھ گیا بلکہ سارے عرب میں بھی. مسلمانوں کا حرم میں آزاد آنا داخلہ نہایت اچھے ذہنی اثرات کا موجب ہوا. 2000 افراد، 100 گھوڑوں اور قربانی کے 60 یا 80 اونٹوں کے ساتھ روانہ ہوئے. اسلحے کا ذخیرہ بند حالت میں ساتھ لیا گیا مگر آگے جا کر مقام جاہج میں رکھ دیا گیا. بروئے یعنی معاہدے کی روح سے قریش کو 3 دن کے لیے مسلمانوں کے لیے حرم بالکل کھول دینا پڑا. بس کٹر مخالفین تو شہر چھوڑ کر دور جبل قعی قعان وغیرہ کی طرف چلے گئے تاکہ اس منظر کو دیکھنے نہ پائیں. یعنی ان کو برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ مسلمان اس شہر میں آ گئے. لیکن عام باشندے، عورتیں اور بچے دار الندوہ کے پاس صف باندھے کھڑے تھے اور اس انقلابی طاقت کا نظارہ کر رہے تھے. تجسس بھی تو ہوتا ہے نا کہ ہو کیا رہا ہے. جس نے مکہ ہی کی فضاؤں میں ابتدائی نشو و نما پائی تھی، یعنی یہ انقلابی طاقت کہاں سے شروع ہوئی تھی، مکہ سے. داخلہ اس شان سے ہوا کہ عبداللہ بن رواحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی باگ تھامے ہوئے آگے آگے ایک رجزیہ. رجزیہ کیا ہوتا ہے؟ سیڈ سیڈ سانگ، سنا میں نام رجز یعنی ایموشنل کہہ لیجئے، دکھی. گیت الاپ رہے تھے، چند بول یہ تھے، بسم اللذی لا دین الا دینہ، بسم اللذی محمد رسولہ. اس ہستی کا نام لے کر ہم داخل ہوتے ہیں جس کے دین کے علاوہ کوئی دین نہیں. اس ہستی کا نام لے کر ہم داخل ہوتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے رسول ہے. یہ جملہ مکہ والوں کو کوئی اچھا لگا ہوگا، تو کہہ لیجئے نا کہ دشمن ملک یا غیر مسلم ملک میں جا کر اسلام کا نام بلند کرنا. پھر آگے ایک شعر تھا، خلو بنی الکفار ان سبیلہ قد نزل الرحمن فی تنزیلہ. اے کفار کی اولاد، اس کے راستے سے ہٹ جاؤ، اور رحمان نے اپنی نازل کردہ کتاب میں یہ تعلیم دی ہے. اب دیکھیے کہ جہاں تک میسج کنوے ہو سکتا ہے کر رہے ہیں نا، تو مسلمان ہر موقع کو दावा का मौका बना लेता है, ये नोट करें। फिर आगे बियन्ना खैर अल कत्ल फी सबील ही, बियन्ना खैर अल कत्ल फी सबील ही या रब्बी इन्नी मोमिनुन बिकील ही, के बेहतरीन जंग वो है जो खुद इसकी राह में लड़ी जाए, ऐ मेरे परवरदिगार मैं तेरे नबी के कॉल पर ईमान रखता हूँ। गीत ही गीत में पूरी दावत हक बयान हो रही है, ये नोट किया आपने, जिसकी गूंज से मक्का की फिजाएं बरसों से खाली हो चुकी थी। इसमें जिहाद तक का रिज शामिल था, इसमें रहमान के किसी प्यारे नाम की पुकार हो रही थी जिससे कुरैश को चिढ़ थी, इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का ऐलान हो रहा था, इस्लाम दुश्मन ताकत को पुरमानी अंदाज से कहा जा रहा था, इस रसूल के रास्ते से हट जाओ, मुजाहमत छोड़ दो। आज कोई ना था जो मक्का में रुकावट डाल सके, मुआहदे ने हाथों और जुबानों को बांध रखा था। नबी सल्लम ने दाखिले के वक्त जमात को हुक्म दिया कि खूब मोंडे खोल कर और सीना तान कर चलो और फैल फैल कर तवाफ करो, ताकि इस प्रोपेगंडे की तरदीद हो जाए कि महाजरीन की हालत भूख और बुखार ने पतली कर रखी है, इस वक्त दुश्मनों को मरूब करना ज़रूरी था। नबी सल्लम ने खूब फरमाया कि अल्लाह की रहमत हो इस शख्स पर जो आज कुफार के सामने कुव्वत का इजहार करे। इसी मसलियत से आप इस्तेलाम, क्या होता है इस्तेलाम, दूर से हाथ उठाकर इशारा करना, आप इस्तेलाम रुकने यमानी से इस्तेलाम रुकने अस्वद तक नरम चाल यानी मशी चलते, और इससे मैं देखने वाला मजमा ओझल हो जाता। फिर बाद के दौर में हल्की दौड़ यानी हरवल लगाते यानी हल्का सा दौड़ना, और यही हिस्सा मजमे के सामने था। मालूम हुआ कि मुखालिफ हलकों में अलमबरदाराने इस्लाम की कमज़ोरी, ख्वाह वो जिस्मानी हो के चर्चों का रोकना और इन पर कुव्वत और शौकत के मज़ाहरे से रोब डालना, इस्लामी सियासत की एक अहम हिकमत है। ये इतनी अहम हिकमत है कि ऐन हरम में और ऐन दौराने तवाफ में भी इसको मलहूज रखा गया। ये मुजाहरा कुव्वते किब्र व गुरूर की तारीफ में नहीं लाया जा सकता था, बल्कि यह ऐन कारे सवाब है। ऐसे मौके पर अगर फरोतनी और इनकसार दिखाया जाए तो वो बिल्कुल उल्टा पड़े। इन छोटे छोटे उमूर से शहादत मिलती है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्त वक्त के सियासी तकाजों पर कितनी गहरी नज़र रखते थे और इनको पूरा करने का कितना एहतमाम करते थे। आखिर ये सियासत ज़ाती जाह के लिए ना थी, ये नोट कीजिए। जहाँ इस्लाम का फ़ायदा हो ना, बस उधर चले जाएं। आपकी किसी की ज़ाती बड़ाई नहीं, ज़ाती चीज़ों के लिए ये चीज़ें बुरी लगती हैं, लेकिन इस्लाम को ऊंचा करने के लिए ये चीज़ें पसंदीदा हैं। खुदाई निज़ाम अदल की सर बुलंदी के लिए थी, इसलिए सरासर दीन थी और इसका हर इकदाम एक इबादत था। गौर कीजिए कि निज़ाम हक के दाइयों की इस जमात को जब मक्का का मजमा देख रहा होगा तो मर्दों और औरतों और बच्चों पर कैसे कैसे असरात पड़ रहे होंगे। ख्याल आते होंगे कि इसी दीन की फसल है जिसने मक्का से आगाज़ किया था और फिर गारे हिरा, खाना अरकम, शाह बबी तालिब और नदवा और गारे सौर के तारीखी मकामात इनके सामने सर उठा उठा कर कहते होंगे कि देखो नेकी की ये ताकत कितनी अजीम है और तुम इसके मुकाबले में कितने फरोतर फरोतर कमज़ोर फरोतर होकर रह गए हो। मक्का की गलियों के जर्रे जर्रे तड़प के उठे होंगे और इन लोगों से कहते होंगे कि ये वो सब्र कैश लोग हैं जिनको तुमने बगैर किसी जुर्म के कई साल तक दुख दिए थे, देखो कि आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। कितने ही कांटों ने सर उठाकर कहा होगा कि तुमने हमारी नोकों से इन जिस्मों को अजियत दी थी, फिर कहीं से हजरत अबू जर की कलमे की वो पहली पुकार काबा से गूंजने लगी होगी जिस पर हंगामा मच गया था, कहीं से हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हों की अहद अहद की सदाएं बुलंद होने लगी होंगी जो तपती रेत के बिस्तर पर पड़कर दिल से उठती थी, दारुल नदवा चीखने लगा होगा कि तुम लोगों ने जिसके कत्ल की साजिशें की थी इसका पैगाम गोशे गोशे में तब्दीली ला रहा है, 13 बरस की तारीख हर चहार जानिब से उमट पड़ी होगी। और फिर बदर और ओहद में काम आने वालों की यादें खूनी पेराहन सजाए नमूदार हुई होंगी और इनकी रूहों से सदा उठी होगी कि तुम भी जागो, तुम भी बदलो, तुम भी आगे बढ़ो और इस सैले रवां में शामिल हो जाओ। एक तरफ इस जमात के तर्ज इबादत का मुजाहरा हुआ होगा और दूसरी तरफ ये अखलाकी मिसाल कायम हुई होगी कि इतनी बड़ी तादाद शहर मक्का में 3 दिन तक मौजूद रही लेकिन बावजूद सख्त तैनात के किसी के जानो माल को कोई नुकसान न पहुंचा। कर सकते थे ना मुसलमान, अपना ही माल उठा लेते वहां से, लेकिन याद रखे कि मुसलमान गदर नहीं करता। घर जिस तरह मुकफ्फल मुकफ्फल कुफल लगाकर ताले लगाकर लॉक्ड मुकफ्फल करके मुशरिकीन बाहर निकल गए थे, इसी तरह से ही सलामत रहे इस्लाम के हामी नासिर जो मक्का में ईमान छुपाए बैठे थे। इनकी आंखें इस नज़ारे से कैसी ठंडी हुई होंगी, इनके जज्बों को एक नई ताकत मिली होगी, इनके अंदर ताज़ा उम्मीदें उभर आई होंगी। मुखालिफीन अपने आप को कितना पसपा हुआ महसूस कर रहे होंगे और इनकी आंखों के सामने कितना तारीक मुस्तकबिल होगा। 3 दिन तक शहर की फिजाओं में यह घटा मोती बरसाती रही। चौथे रोज सुहैल बिन अमर और खुतब बिन अब्दुल उज्जा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, जबकि आप अंसार के दरमियान बैठे बातचीत कर रहे थे। सुहैल ने कहा कि 3 दिन पूरे हो चुके, अब मेरी जमीन से निकल जाओ। साद बिन उबादा इस तर्ज खिताब पर जब्त न कर सके। उन्होंने कहा, जमीन न तेरी है न तेरे बाप की, हम हरगिज न निकलेंगे। नबी सल्लम ने फौरन ही फिजा को ठंडा करने के लिए जरा लतीफ अंदाजे गुफ्तगु इख्तियार किया। समझ आ रहा है? ये होता है लीडर का काम, तल्ख बातों को, तुर्श बातों को मीठी बातों में छुपा देना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मैमूना रजी अल्लाह अन्हा से इसी मौके पर निकाह फरमाया कि देखो, हमने यहाँ से निकाह किया है, क्या हर्ज है कि ज़रा खाना वाना पक जाए, हम भी खाएं और आप लोग भी शरीक हों। इस फिक्रे में कई पहलू थे, मगर इनकी कसाफत मिजाज में फ़र्क ना आया। कहा गया कि हमें खाने वाने की ज़रूरत नहीं, बस आप चले जाइए। वो बेचारे भी क्या करते, देख रहे थे कि सारी फिजा मुतासर हो रही है। इनके इसरार की वजह से नबी सल्लम ने जमात को कूच का हुक्म दिया। चलते वक्त हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब की छोटी सी बच्ची याम याम पुकारती दौड़ी आई और आपसे लिपट गई। कौन थे उसके? चचा। क्या ही रिक्कत अमेज समा होगा। नबी सल्लम ने इस बच्ची को साथ ले लिया और किसी कदर निजा के बाद अपनी खाला के सपुर्द कर दिया, जो जैद बिन हारिसा की अहलिया थी। अब याद कीजिए इस वाक़े को कि हुदैबिया से वापसी में नबी सल्लम पर एतराज़ हुआ था कि आपने तो फरमाया था कि हम हरम में दाखिल होंगे और तवाफ करेंगे। सवाल का मुद्दा ये था कि ऐसा हुआ तो नहीं, यानी नऊज़ बिल्लाह अल्लाह के नबी की बात सही नहीं थी क्या, जो कहा था वो नहीं किया। आज भी बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन होते हैं, जो कहा था वो तो हुआ नहीं, जैसे सोचा था वैसे तो हुआ नहीं, तो अल्लाह के नबी ने इसका क्या जवाब दिया? आपने जवाब दिया, मैंने ये कब कहा था कि इसी साल, और अगर वाकई 6 हिजरी में वो बात पूरी भी होती तो इस शान से ना होती बल्कि खून खराबे के साथ होती। ज़ाहिर है उमरा करते लोग इनको मारते डांटते, और वही जो एक मंजर था मक्का के दौर में जुल्म बरबरीत का, वो हो जाता। 1 साल का फासला तहरीकों की तारीख में एक लम्हे की सी नौयत रखता है। इसको नोट करें, तहरीक एक दिन में नहीं चलती, याद रखिए हरकत है। कई काम आज के दौर में जो मुसलमान कर रहे हैं, याद रखिए ये एक तहरीक में बदल चुके हैं आप, और इसका असर कुछ साल के बाद दिखेगा, फौरी नहीं नज़र आता। ज़रा से वक्फे के बाद बेखौफी की हालत में और पूरी आनवान से हरम में दाखिला और उम्रे का होना बेहद बरकत रखता था। फिर जब इस वाक़े का कबाइल अरब में चर्चा हुआ होगा तो राय आम इस तब्दीली अहवाल से बहरहाल मुतासर हुई होगी। लोग महसूस करते होंगे कि जिस मक्का से मुसलमानों को निकाला गया था, इसमें वो सीना दाने और मोंडे खोले दाखिल हुए जो कुरैश मुस्लिम जमात को मिटा देने के दर पे थे। उन्होंने इसी से मुसालहत करके अपने आप को बेबस कर लिया। इससे ये अंदाजे लाजिमन बांधे गए होंगे कि मुस्तकबिल मदीना का है। जाहिर बात है कि दिलों के दरवाजे भी इस्लाम के लिए और ज्यादा खुल गए होंगे। मुख्तसर यह है कि उमरतुल क़दा भी इस्लाम के फरोग में बहुत मुमित यानी मददगार साबित हुआ। तो आप देखिए कि इस छोटे से वाक्य में भी तो हमारे लिए बहुत कुछ है ना। अगर इंसान सच्चा हो तो अल्लाह ताला उसकी सच्चाई को दुनिया के सामने ले आता है, और ये सब चीज़ें पढ़कर हम सब ये सीखेंगे कि कभी कभी वक्ती तौर पे दब जाना बाद में उभर जाने का ज़रिया बनता है, और सीरत इस बात को सिखाने का बेहतरीन सोर्स है। अल्लाह ताला आपको मुझे इतनी ही हिकमत अता फरमाए जितनी नबी सल्लम को अता फरमाई। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।